주
이름만 받아서
और किसी इच्छा से नहीं, मैं मुझसे मैं मुझ में या तो किसी समय यह इस संसार में आशीष वरदान आशा सते अंतिक इच्छा अनुत्र परलोक में चा तथा ये जो भक्त है भवदीधा तुम्हारे जैसा तथा मनवंतरम एक मनु की आयु तक यह पृथ्वी अतः इस संसार में दैत्य ईश्वराणाम भौतिकवादी मनुष्यों के ऐश्वर्यों का अनुभव भोग कर सकते हैं भोगान सभी भौतिक ऐश्वर्यों का स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज के द्वारा भगवान ने कहा यही प्रिय बल्ला तुम जैसा भक्त न तो इस जीवन में नहीं परलोक के विषय में किसी भी प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य की कामना नहीं तो भी मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम इस मनवंतर पर असुरों के राजा के रूप में रहते हुए इन असुरों के भोग को भोगो। प्रत्येक मनु की आयु 71 युग चक्र के तुल्य परिगणित की जाती है जिसमें प्रत्येक युग 43 लाख वर्ष के समान होता है। यदि भी नास्तिक लोग भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना चाहते हैं और बड़े जोर शोर से बड़े आवास और सड़के शहर कारखाने इत्यादि बनाते हैं किंतु 80-90 वर्ष ज्यादा से ज्यादा बहुत हुआ तो 100 वर्ष से अधिक जीवित रहने वाले नहीं है या उनके द्वारा आविष्कार की गई वस्तु रहने वाली। फिर भी चूंकि बल्लाल माना यदि भौतिकवादी व्यक्ति व्यामोह का साम्राज्य बनाने में इतना श्रम करता है लेकिन वह कुछ वर्षों से अधिक तक इसका भोग नहीं कर पाता। फिर भी चूंकि बल्लाल महाराज भक्त थे अतः भगवान ने उन्हें भौतिकतावादियों के राजा के रूप में ऐश्वर्य भोग करने की अनुमति प्रदान कर दी। बल्लाल महाराज ने इन्हें कृष्ण के परिवार में जन्म लिया था जो सर्वोच्च भौतिकवादी था और चूंकि लाल अपने पिता के प्रामाणिक उत्तराधिकारी भी थे अतः भगवान ने उन्हें अपने पिता द्वारा बनाए गए साम्राज्य पर इतने वर्षों तक भोग करने की अनुमति प्रदान की जिसकी गणना किसी भी भौतिकवादी व्यक्ति के लिए कर पाना संभव है। भक्त को भौतिक ऐश्वर्य की कामना नहीं करनी रहती किंतु यदि वह शुद्ध होता है तो बिना किसी प्रयास के उसे भौतिक सुख भोग करने का अवसर प्राप्त होता है। अतएव हरेक को सलाह दी जाती है कि वह सभी परिस्थितियों में भक्ति करे। यदि कोई भौतिक ऐश्वर्य चाहता भी हो तभी वो भक्त बने और इस तरह उनकी इच्छा पूर्ति भगवान करेंगे। श्रीमद् भागवतम में 2-3-10 में कहा गया भक्ति चाहे कोई कुछ चाहता हो या अथवा उनको कुछ नहीं चाहिए मुक्ति चाहता है उन सबको तीव्रता से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, यही बुद्धि होगी। ज्ञान सनातन चक्षुर्मीलितं जैन तस्मै श्री गुरुवे स्थापितं चेतनोतन सुनमरूपकदामय्यं ददाति शबदम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बाणां सहगण ललिता शिवशाखन्वितंश्च मुखं करोति वाचां अंगुमलं गयद्गिरिं जत्कृपातं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुन् जगदानन्दं जयतं सुरतपङ्गौर् मम मन्दमदेगति मत्सर्वस्य पदाम्बोजौ शिलाभावदनमोदनं वञ्चाकल्पदर्भ्यश्च कृपासिन्धुगणेवच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण जय प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्त
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे यद्यपि इस श्लोक में देखा जाता है कि श्री प्रहलाद महाराज निष्काम भक्त होते हुए भी उनको भोग का आशीर्वाद दिया जा रहा है। लेकिन भगवान का श्राप आशीर्वाद और भक्त का भी श्राप आशीर्वाद सब एक समान है। श्री नरसिंहदेव प्रहलाद की स्तुति से खुश होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, श्री प्रहलाद हे वत्स, जो लोग मेरे एकांतिक भक्त होते हैं वो अनंत प्रयोजन होते हैं, न अन्य प्रयोजन होते हैं, उनका मुझसे भी कोई प्रयोजन नहीं है। और मेरे अलावा किसी भी वस्तु की उनके हृदय में कामना नहीं होती, और न केवल तुम, जितने भी मेरे निष्काम भक्त हैं उनका हृदय तुम्हारे जैसा ही है। शिव साईं बात कहते हैं कि न केवल तुम, सभी जितने भी भक्त हो, निष्काम भक्त जब व्यक्ति हो जाता है तो उनका हृदय तुम्हारे सदृश हो जाता है, उनको कुछ चाहिए नहीं, कभी भी वो लोग कुछ नहीं मांगते कि मई जातु इहाशिष आशास्ते अमुत्र, वो यही पर इस जगत का भोग नहीं मांगते हैं और कभी भी वो परलोक में अच्छा भोग मिले इसकी आशा से मेरी भक्ति करते हैं, क्योंकि वो एकांती नहीं, वो एकांतिक भक्त जिसका अंत उस एक भगवान में होता है। अनेक पदार्थ में नहीं, उनको एकांतिक भक्त। का बुद्धि है वो बुद्धि अनेक पदार्थों में भटकती है, जैसे हम लोग की भटकती है। भगवत भजन करते हुए भी हमारी भावना इन भक्ति करते हुए भी भोग की भावना हम लोग हृदय में संजो करते रहते हैं, एक निश्चित बात है। तो ऐसे भक्तों की रक्षा के लिए भगवान उनकी भक्ति के अनुकूल भोग उनको दिया करते हैं, भगवान को एक डर रहता है कि छोड़ ना दे भजन, अगर नहीं दे तो उतना दे देते हैं भजन साधन का, उनका निर्वाह चलता है, नहीं देने से तो माला छूट देगा। बोले जब से हरकृष्ण मंत्र चालू किया तब से ही आपत्ति आना चालू किया है, आप अपना जोड़ी माला रखिए, सब भगवान देते हैं। और वस्तुतः इस जगत में जिस किसी के द्वारा भी मिलता है वो तो भगवान की देन है ना, कोई दूसरे किसी की नहीं है। पर देवताओं के द्वारा किसी को मिलता है, लेकिन विहिता निता भगवान बोलते हैं, मेरे द्वारा विहित होता है, तान ही विहिता, उनको मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है तब इन लोगों को मिलता है। बोले देवी देवताओं के माध्यम से मिलता हो तो जगत के समस्त जीवों की भोग सामग्री भगवान के द्वारा ही होती है, वो सप्लाई भगवान के द्वारा। माध्यम विशेषता को बनाते हैं, क्योंकि जीव उन अविधि पूर्वक भजन करते हैं, विधि नहीं जानते। तो भगवान भी उनको उनके अनुसार जे जथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि अहम्। भगवान बोलते वो जिस रूप में भी वो आखिर वो है मेरा भक्त, वो देवताओं के माध्यम से सेवा अर्पित करता है, ये सोच कर भगवान उनको भोग भी प्रदान करते हैं। और प्रत्यक्ष भी प्रहलाद महाराज साक्षी है, नहीं मांगने पर भी जो देते हैं तो मांगने पर नहीं देंगे, वो देंगे लेकिन बीमार व्यक्ति को क्या दवाई के साथ क्या क्या खाना देना चाहिए वो एक डॉक्टर होने के नाते ये सब ख्याल है, इसका इसकी बीमारी के बढ़ न जाए उस प्रकार उनको भोग भी देते हैं। लेकिन वस्तुतः भगवान के द्वारा इस प्रकार दिया हुआ वस्तु को भगवान नहीं चाहते हुए देते हैं, चाहते नहीं है, ये विश्व सदृश भोग भगवान देना नहीं चाहते, लेकिन इन लोगों का माइंड इस प्रकार का है तो उनकी श्रद्धा को देवी देवताओं के प्रति बढ़ाने के लिए क्या कि तगड़ी श्रद्धा हो जाए तो एक ना एक दिन साधु की संगति होने से मुझ में हो जाएगी, ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन श्रद्धा तो तगड़ा चाहिए। तो उनकी श्रद्धा को शास्त्र के प्रति तगड़ा करने के लिए ये सब कार्य करना है और कुछ नहीं। इच्छा नहीं होते हुए भी भगवान जीवों को भोग देते और प्रत्यक्ष रूप में कदाचित भक्त नहीं चाहने लायक वस्तु की इच्छा करता है तो उनको उसी प्रकार उस ढांचे में डाल करके वो वस्तु देते लो भोग, लेकिन भोगने की अवस्था रहने नहीं देते, अनेक प्रकार का अंतराय डाल करके भोग देते हैं। बहुत कष्ट से वो भोग मिलता है और बहुत भय के उसमें बहुत बड़ा भय भी है, लेकिन देते हैं। कच्चा भक्त उनको इस प्रकार देते हैं और पक्के भक्त को देखिए तू महाराज अल्लाह महाराज तू मान तो 36,000 वर्ष का आयुष्य के साथ इस पृथ्वी का राज्य दिया और उनका परलोक अक्षर वैकुंठ की तरह परलोक दिया। कोई ये न कहे कि अरे झू महाराज महाराज के उनको मांगना नहीं है, देना चाहिए ना ठीक से, वो तो बालक था उनको क्या मालूम है, खुद कह दिया हमें कुछ नहीं चाहिए पर हम नहीं आचे, लेकिन वह दाता को सोचना चाहिए ना, लोग कुछ लोग टीका करेंगे। तो भगवान ने और अक्षत लोग साक्षी देता है कि भगवान मांगने वाले को क्या नहीं देते, अपने सदृश वैकुंठ लोग इस भौतिक जगत में देने लगते रहो बेटा भौतिक जगत में वैकुंठ भगवान क्या देते। और भगवान ने ये कुछ आश्चर्यजनक वस्तु भी देखी, दैत्य रूपा जी लिखते हैं कि उनका बाप उनका पिताजी सबसे बड़ा भौतिकवादी था, उनके लड़के को कोई ऐश्वर्य दिया भोग बेटा, प्रहलाद महाराज ने कितना विनती किया नरसिंह देव ने पहले भी मांगने के लिए कहा, तब उन्होंने प्रत्येक श्लोक आप पढ़ते आ रहे हैं वो प्रत्येक श्लोक में एक दूसरे तरीके से कुछ वर नहीं मांगने की चेष्टा ही उनकी, बोले नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, हर एक श्लोक में नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए,
फिर भी भगवान देने के लिए तुल गए,
क्या कारण है? कुछ तो कारण हो सकता है ना,
फिर भी भगवान दे रहे, जबरदस्ती उनको नहीं चाहिए। वस्तु करती ये वो माया जैसा नहीं है, जैसे इस जगत में ये माइक जगत में माया के द्वारा जो सप्लाई आती है उनमें जो व्यक्ति को चाहिए वो नहीं मिलता है, उनके लिए वो तड़पाती रहती है, नहीं मिलेगा बेटा तुमको, नहीं मिलेगा जो चाहिए वो है। और जो नहीं चाहिए, जैसे यश चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिलेगा, पेपर भर भर के गाली आती है, बोलते यश चाहिए यश चाहिए, पर ये अभ्यास नहीं चाहिए वो आती है सामने। अपनी स्थिति के सुधार के लिए माया भी इस प्रकार करती है, भगवान कैसा ये भक्त का कैसा है, इसका भक्त है फिर भी उनको भोग दिया क्यों दिया? आचार्य बहुत सुंदर इसके ऊपर उपेक्षा होती है, शिव क्यों सही बात तत्व चाहिए, उनकी टिप्पणी बहुत सुंदर इसके विषय में। वो कहते क्या था कि श्री नरसिंह वाक्य नेता, यद्यपि भगवान नरसिंह का वाक्य है कि न एकता तेरे जैसे भक्त नहीं चाहते हैं, विहायति तत् प्रार्थना अनुसारे, बोलते वो तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार ही मैं तुमको देता हूं। क्या देते प्रार्थना के अनुसार? उल्टा दे रहे ना, मैं तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार ही तुमको देता हूं, या तुम जिनके लायक हो वो अभी तुम तुम्हें देना चाहता हूं। तो क्या है तो कहते सर्वलोक के तार्थी कर्म ये मुख्य, तुम्हारी इच्छा देखी गई ना बोला क्या, तुम सब जगत के जीवों को तारना चाहते हो, तारो तारो एक मनमंत्र तक तार पहुंचा के। देखिए ये आचार्य खोज करके निकाला, तो कहते सब लोक के तार्थी कर्म ये मुख्य प्रयोजनम, तुम्हारा मुख्य प्रयोजन यही है ना, तो इच्छा रखते हो और असुर कुल में रहते हुए भी देवता रूप तुम्हारा गुणगान गाएगा, कितना जस भगवान ने दिया श्री प्रहलाद महाराज को, असुर कुल में उनके दुश्मन के घर में उनके दुश्मन के औलाद का गुणगान गाने के लिए देवता रूप बाध्य हो गए, देवता रूप नहीं जाते असुर का गुणगान गाए है? लेकिन देवता लोग भी उनका गुणगान करेंगे। बाकी बाद में जो नरसिंह देव कहेंगे आगे के श्लोकों में वो लक्ष्य मात्रम केवल कहने के लिए है, लक्ष्य का भी है कहने के लिए है, आगे के श्लोक में नरसिंह देव वर्णन करें। तीन श्लोक आगे आता है इसमें नरसिंह देव क्या बोलते हैं, क्योंकि जीव गोस्वामी पद ऐसा लिखते हैं उनके लिए आगे के तीन श्लोक केवल अनुवाद लिखे। वो क्या कहते भोगे पंडित कृष्ण पाप करेवरम काल जमन हित हुआ और कीर्ति विशुद्धाम सुरलोक गीताम वित्ताय माम ऐशिष मुक्त बंध। बोलते पुण्य भोगे, पुण्य करके पुण्य के जो पुण्य का फल तुम्हारा है उसको भोग लो, और पापम करे बनो, यदि भी तुम्हारा कोई पाप नहीं है लेकिन जो पुण्य का भोग है तो उनको तुम भोग करके खत्म करो। और असुर कुल में तुम आए हो कदाचित कोई व्यक्ति कहेंगे पाप के कारण नहीं तो कैसे वो आता था असुर कुल में, तो ठीक है उनको भी कहते करे बनो काल जमीन हित्वा, ऐसा जो पाप और पुण्य भोगने वाला शरीर है लिंग देह उनका तुम भोग करके नाश करके अपनी विशुद्ध कीर्ति का और सुरलोक गीतम विशुद्धाम कीर्ति
देवता लोग तेरी कीर्ति को गाएंगे, ऐसे यश का भी विस्तार करो। माँ में शिशु मुक्त बंधन कहते केशव का, तुम इन सब पाप और पुण्य के फल को भोग करके मेरे पास आओ। क्या भोग रह जाएगा आपके दर्शन के बाद? कोई भोग रह जाएगा? वस्तु तो एक केवल लक्ष्य मात्र करते हैं, ये कहने के लिए कह रहे हैं, ऐसा जीव सही बात है। अन्य अन्य तो लक्ष्य मात्र, बाकी मुख्य प्रयोजन सर्वलोक की तार्थ, सब लोग को किताब करने की जो इच्छा थी। शिवलाल महाराज बोलते जी भर के प्रचार करो, प्रचार की इच्छा है तो बोला, इसको करुणा कहते। भगवत भक्त के हृदय में स्वाभाविक प्रति जीव के प्रति जो करुणा पड़ी हुई है वो कितनी देर, भगवान सदस्य भक्त तैयार हो जाते हैं। और कुछ बातें आगे के श्लोक में वसुदेव कहते हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये यत्र कीर्तयेत् मह्यं त्वया गीतम् इदं नरः त्वां च माम स्मरण कार्य कर्म बंधात प्रमुचेत। यह एतत् कीर्ति यद् मह्यं त्वया गीतम् इदम्, तुम्हारी जो एक कीर्ति है मेरी भक्ति जिस प्रकार तुमने किया और उस प्रकार का तुम्हारा जस है, मैं चाहता हूं कि वो जस और विस्तारित हो, क्योंकि जब तुम रहोगे तो ऐसे ही यशस्वी कार्य करते रहोगे, भक्ति पर कार्य तुम करते रहोगे, मेरा स्मरण मेरा कीर्तन करते रहोगे तो तुम्हारा यश उसी प्रकार बढ़ता रहेगा। और कहते हैं इसी प्रकार तेरा और मेरा प्रहलाद उन दोनों की लीलाओं का जगत स्मरण करेगा और कर्म बंधन पर मुचित वो लोग उस प्रकार कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। वो सदा याद रखेंगे। और इसमें कुछ स्कोप नहीं है, ये कहते हैं श्री नरसिंह देव। और दूसरा प्रयोजन क्या है उसको श्री साईं बाबा गीत करते हैं। सत्यम एकांत भक्तस्तुम तथापि मद आज्ञा करनी करिए कि आह। ये सत्य बात है कि तेरे जैसा भक्त में इस भौतिक जगत को भोगने की कोई स्पृहा नहीं हो सकती, लेकिन मेरी आज्ञा है तो मेरी आज्ञा का पालन करो और मेरी आज्ञा का पालन करके इस जगत में तुम्हारा जस बढ़ेगा, तुम्हारी ख्याति देखे। वो भगवान के कहने पर इस जगत में जो नहीं रहने लायक संसार है भक्तों के लिए उसमें रह करके भगवान की आज्ञा का बड़ा पालन किया।
तो मेरी आज्ञा है, कोई लंबा काल तुमको नहीं रहने के लिए कह रहा हूँ। एक मनोन्तर एक मनोन्तर माने 71 चतुर्युगी, एक मनवंतर तुम या असुर के भोग को दैत्य ईश्वर दैत्यों के समाज का राजा होकर के भोक्षक होगा, उन दैत्यों के भोग को तुम भोग बात कहते हैं। मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा का तुम पालन करो। एकांत भक्ता अनन्य प्रयोजन भजंत मैं मत जात कदाचित अभी यह अमृत नलों के आशीष कामान न आशासते यदि न प्रार्थयन्ते तथापि एतत् मन्वंतर पर्यन्तम् अत्र एव लोके दैत्य ईश्वराणाम् अधिपो भूत्वे इति शेष भोगान् मोक्षम्। तो बात कह दिया एकांतिक भक्त या अनंत जिनका अन्य प्रयोजन नहीं है, ऐसे भक्त ऐसी तुम्हारी भक्ति है कि तुम्हारे भक्ति का कोई अन्य प्रयोजन नहीं है, लेकिन इस पर भी मैं आदेश देता हूं कि तुम इस दैत्यों के भोग को भोगो, उसमें केवल अपने भक्त का ख्याति सुनना भगवान का एक आनंद का विषय है, ये भगवान स्थापित करते हैं। जब भक्त का गुणगान कोई गाता है तो उसके ऊपर भगवान ज्यादा कृपा करते, प्रहलाद को माध्यम बना करके जगत के जीव को मौका प्रदान करना चाहते थे, तो उनका भूरी भूरी प्रशंसा लोग करें ताकि उनकी प्रशंसा के कारण मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। भगवान को कुछ बहाना चाहिए भाई इस जगत के संसार से जीव को निकालने का, कंडीशन उन्होंने रखा है कि मेरी कृपा इनके प्रकार जीव प्राप्त तो करे। तो एक कारण ये भी है कि प्रहलाद की ख्याति को यहाँ पर जीव गाएगा तो भगवान को एक मौका मिल जाएगा। देखिए असुर लोग तो गाते ही है लेकिन देवता लोग ब्रह्मांड में कहीं भी कोई व्यक्ति भक्तों का ख्याति को गाते हैं भगवान का अतिथि पात्र हो जाता है। अतिथि इसलिए भगवान चैतन्य देव की लीला में लोग देखते थे, जब चैतन्य देव भगवान अपने भक्तों का गुण गाते थे तो जैसे उनके पास 100 जीवा है उसी प्रकार गुणान हुआ भक्तों की सराहना कर ये शिक्षा के चेतन। और ये भी बताते हैं अपने उन वो अष्टप्रहरी लीला में जब उन्होंने प्रकाश किया था तो उस समय एक एक भक्तों को मांगने के लिए बुलाते थे, लेकिन उनके पास क्या मंगवाते थे? भक्ति, अपनी या दूसरे की भक्ति में वृद्धि करने जैसा ही वरदान मंगवाते थे। तो भगवान यही चाहते हैं कि इस प्रकार मेरे भक्तों का चरित्र देख करके दूसरे जीव जो भोग में लगे हुए हैं वो भी ऐसी एकांतिक भक्त बने। जब भी भगवान का अवतार होता है तो उनकी लीला देखने से ये पता चलता है या उनके इस प्रकार के जो भौतिक वरदान है उनके पीछे केवल यही कारण है। अब एक मनवंतर तक प्रहलाद महाराज रहे तो उस टाइम उनके गुणगान गाय बगैर कौन जी रहा होगा है? तो एक मनवंतर तक जितने जीव आए शरीर धारण करके उन्होंने प्रहलाद का गुणगान और भगवान के कहने पर एक ब्रह्मांड का तारण तो किया। लेकिन भगवान उन्होंने तेरा इच्छा है ना अरे और सबको तारण का तो अंततः प्रहलाद महाराज की इच्छा के अनुसार वरदान देते हैं। जो प्रहलाद महाराज का इच्छा है वैसे कोई गलत वरदान नहीं है। प्रहलाद महाराज का इच्छा बाकी ये जो कर्म फल भोग इत्यादि इसमें लिखा गया है वो वस्तुतः ये ठीक बात नहीं लिखी गई है। मतलब ये केवल लक्ष्य के लिए लिखा गया है बाकी उसमें प्रहलाद महाराज की कीर्ति का गान लोग करें प्रयोजन है। तो अगर किसी को भोग भी चाहिए रूपा जी लिखते हैं रूपा पढ़ते हैं तो उनको भगवान का भजन करना है। भगवान का भजन करने से जो भोग मिलता है उसमें बुद्धि नहीं अटकती मन नहीं अटकता क्योंकि भगवान उनके रक्षक होते हैं। अंततः उन भोगों में उनका वैराग्य कराते हैं ये भगवान कराते हैं। इन भोगों की अरुचि भगवान उत्पन्न करते साथ साथ में उनके हृदय में भोग देते हैं एक साइड से ठीक है लो और दूसरी साइड से उन भोगों की अरुचि या ऐसा सिचुएशन कर देते हैं कि चारों ओर लोग उनकी निंदा चालू करें और इसीलिए भक्त भोग से रुक जाए। पर देवी देवता में फैसिलिटी है बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं। देखिए देवदेव महादेव सब कुछ दिया लेकिन किसी को बचाया नहीं। रावण को नहीं सुधारा न कौन कौन है शिव जी के भक्त जितने भी देख लीजिए कोई भी आदमी शिव शिव भक्तों को दे दीजिए क्रोध से भी नहीं बचाते क्रोधी होते हैं तो बचा नहीं तो दूसरे दिन देवता के पास वरदान दे सकते हैं। जीव का जो आदत बिगड़ता है उनको सुधारने के लिए तो कार्य परमात्मा करते हैं जो सब घट घट व्यापी वो एक भगवान मात्र है और कौन वो लोग का ताकत नहीं है। तो परमात्मा ये जान करके कि इनकी इच्छा क्या है इसको जान करके ऐसी व्यवस्था देंगे साथ साथ और वैदा की उत्पन्न कराने के लिए दूसरे जीवों के हृदय में प्रेरणा दे करके उनको वैदा उनके वैदाग्य में सहयोग भी करेंगे इस प्रकार व्यवस्था भी भगवान करते हैं। लेकिन ये प्रत्येक देवी देवता प्रत्येक हृदय में नहीं होने के कारण ये नहीं कर सकते। इसीलिए वो देवताओं का भजन भारी पड़ता है जीवों को बहुत भारी पड़ता है। कहीं जा करके हजार दो चार हजार युग के बाद में कहीं बुद्धि सुधरती लेकिन भगवान एक जन्म में सुधार कर देते हैं। ज्यादा नहीं सुधरता तो खींच लेते हैं चलो बेटा दूसरे में जाओ इधर नहीं करता जाकर करो भजन, भगवान दया माने करुणा माने, अतः भगवान का आशीर्वाद, भगवान का श्राप दोनों एक है और देवताओं का आशीर्वाद श्राप है। इसलिए श्राप लेने के लिए कौन मेहनत करेगा? श्राप दीजिए, हे श्राप दीजिए, हे देवी हमें श्राप दीजिए, ये सब लोग श्राप मांगे हैं। आशीर्वाद है ही नहीं वहां पर देवी का, आशीर्वाद भगवान के पास ईश्वर की बात मिलती है। प्रहलाद महाराज की तरह भगवान विष्णु के भजन में रहते हैं, इतर उनका मुक्ति नहीं है। कुल मिलाकर के श्री प्रहलाद महाराज को दिया हुआ जो वर है इस श्लोक में, वो उनकी इच्छा के अनुकूल दिया है, लेकिन तरीका दूसरा है और उसमें भगवान का एक प्रयोजन नहीं होता है, कई प्रयोजन सिद्ध करते हैं भगवान। तो उस प्रकार इन प्रहलाद का गुण अनुवाद दूसरे जीव के मुख से सुन करके भगवान एक मौका खोज देते कि मेरे भक्त का गुणगान किया है। दैत्य लोग और देवता लोग दोनों प्रहलाद महाराज का गुणगान गाते हैं, दोनों तो इसलिए गाते थे उनका इतना सुंदर शासन, वो गुणगान किए बगैर नहीं सकते। तो कम से कम एक मनमन तब तक दैत्य लोग तो प्रहलाद महाराज के बाद देखिए उनके पुत्र कितने बड़े दाता हुए, कितने बड़े दाता हुए। और आगे हिंदू के स्पीकर भी नहीं सुना गया उतना दान धर्म में उनका रुचि था। और उनका पौत्र भगवान का महान भक्त बड़ी महाराज, देखिए इस सबसे ये पता चलता भगवान कई प्रयोजन से इस प्रकार का वरदान नहीं चाहते हुए भी कहते इससे मेरी कृपा और मिलेगी, मेरी कृपा चाहिए ना, तभी हो जाए। कृपा तो हुई है लेकिन इसके कारण और तगड़ा कृपा तुम्हारा होगा, क्योंकि जितना लोग भक्ति करेंगे तुम्हारे कारण सेव तुम्हारा रहेगा ना, तो उतना गाढ़ा भक्ति का आशीर्वाद। जिज्ञासा 9-5 हो गया है, ठीक है कर ले तेरी जो भी है इच्छा पूरी कर ले। उसका उदाहरण तुम हो, भोग का प्रबल इच्छा है फिर भी ब्रह्मचारी के भीतर डाल दिया है, तो क्या करें हम, ब्रह्मचारी कपड़ा लाल दे दिया है तो रहो मरो, उसका उदाहरण तुम हो। और कोई जिज्ञासा है? हाँ जी,
बताया कि जिसकी इच्छा है तो इसकी इच्छा भगवान पूरी करता है और एक साल से वैराग्य उत्पन्न कराता
है,
लेकिन जैसे भी भोग की इच्छा कम होती है, हमारे जो भोग जैसे कम होता है तो हम ज्यादा कोशिश करते हैं ज्यादा भोग लेने,
लेकिन भगवान निष्फल करते हैं।
इसमें वैराग्य कैसे
आएगा? वैराग्य इसलिए आएगा कि भगवान वहाँ उनको निष्फल करते हैं, उनकी कामनाओं को उनको देते नहीं, सप्लाई नहीं देते, इसलिए तो आप बार बार इजराइल जा करके भी आपको कुछ नहीं आया, वो कोई नहीं देगा आप क्यों ना, हरे कृष्ण इनके उदाहरण वाला प्रश्न कर रहे हैं। मेहनत का उदाहरण प्रश्न से पहले सोचना चाहिए,
Thank you.